आज है अप्रैल महीने की 30 तारीख दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। इस्लामिक स्टेट ने 5 साल बाद अपने नेता का वीडियो जारी किया। अल बगदादी के घायल या मौत की खबरों पर उठे सवाल।
इस वीडियो में बगदादी ने श्रीलंका में ईस्टर संडे के मौके पर हुए हमलों के बारे में भी बात की है।
वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को मिला सपा बसपा का साथ।
हमने सभी पार्टियों को लेटर लिखा कि भाई जो पार्टियां वाकई में कहती हैं कि हम फौजियों के, किसानों के, मजदूरों के साथ हैं, तो आज देश की हालात है।
और एक खास रिपोर्ट पाकिस्तान की सरहद के पास बसे भारतीय गांव से।
चले थे सवेरे से, करीबन टाइम नहीं देखा, दस्तूर निकले से पहले चले।
बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, जरा पैदल कोई यहाँ रास्ते पर से आए नहीं, गाड़ियों का साधन नहीं है वोट डालने के लिए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक व्यक्ति का वीडियो जारी किया है जिसे वो अबू बकर अल बगदादी बता रहे हैं। बगदादी को आखिरी बार 2014 में इराक के मोसुल शहर की एक मस्जिद में देखा गया था। उनकी मौत की और उनके घायल होने की अफवाहें कई बार उड़ी, लेकिन ताज़ा वीडियो में बगदादी स्वस्थ नजर आ रहे हैं और हाल में हुई घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अमरीका ने एक बार फिर इस्लामिक स्टेट को हराने की प्रतिबद्धता जताई है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि वो वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के डिप्यूटी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजनस्टाइन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ही 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के मामले में जांच के आदेश दिए थे और इसके लिए स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर की नियुक्ति की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर रोजनस्टाइन की आलोचना करते रहे हैं। लंबे वक्त से संभावना जताई जा रही थी कि वो पद छोड़ सकते हैं। रोजनस्टाइन का कहना है कि वो 2 हफ्ते में न्याय विभाग छोड़ देंगे। FBI ने एक श्वेत राष्ट्रवादी रैली पर नेल बम हमला करने की योजना बनाने के अभियुक्त एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया है। ये रैली कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर होने वाली थी। एक प्रेस वार्ता में अमेरिका के अटॉर्नी निक हना ने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन में गुनाह कबूल करने के बाद मार्क डोमिंगो को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा,
He was taken into custody after he took receipt of what he thought were pressure cooker bombs.
उसने माना कि उसे लगा कि वो प्रेशर कुकर बम है और वो लॉन्ग बीच की रैकी करने भी गया था। इस कबूलनामे के बाद डोमिंगो को हिरासत में ले लिया गया। उसने कथित तौर पर 3 इंच की कई 100 कीलें भी खरीदी थी जिसे वो IED के शेल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। ये कीलें इंसानी शरीर में घुस सकती थी और अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन किस्मत से जो IED इस्तेमाल करने की उसने योजना बनाई वो असली बम नहीं थे, वो निष्क्रिय डिवाइस थे जो FBI ने दिए थे। ये थे अटॉर्नी निक हना के शब्द। अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 5G नेटवर्क के लिए क्वावे कंपनी की सेवाएं ली तो उन देशों के साथ जानकारी साझा करना वो बंद कर सकता है। अमेरिका क्वावे के चीनी सरकार के साथ संबंधों को लेकर चिंतित है। खबरें आ रही थी कि ब्रिटेन अपने नेटवर्क के नॉन कोर हिस्सों के लिए क्वावे की सेवाएं ले सकता है, जिसके बाद अमेरिकी साइबर एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के उप सहायक सचिव रॉब स्ट्रायर का बयान आया। उन्होंने कहा,
We don't believe that any part of a 5G network should have untrustworthy vendors.
हमें नहीं लगता कि 5G नेटवर्क के लिए क्वावे की सेवाएं लेनी चाहिए। किसी अविश्वसनीय कंपनी का संबंध 5G से नहीं होना चाहिए। हम अपने दोस्तों और सहयोगियों से ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि ये न सिर्फ हमारे रिश्तों के लिए बल्कि हमारे अपने नागरिकों के लिए भी खतरा है। ये थे रॉब स्ट्रायर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बोइंग के 4 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने अमरीकी विमानन नियामक को फोन कर नए 737 मैक्स जेटलाइनर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पिछले दिनों इस विमान से 2 भयानक हादसे हुए थे जिसमें करीब 350 लोग मारे गए थे। कहा जा रहा है कि एक विसल ब्लोअर ने संघीय विमानन प्राधिकरण से संपर्क किया और विवादित स्वचलित सिस्टम के सेंसर में खराबी की बात कही। बोइंग के मुख्य कार्यकारी ने कहा कि जोखिम को खत्म करना कंपनी की ड्यूटी है और वो इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नए सॉफ्टवेयर को मंजूर कराने की प्रक्रिया में है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति अबू बकर अल बगदादी है। यदि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो जाती है तो बीते 5 साल में बगदादी का ये पहला वीडियो होगा। इस्लामिक स्टेट के नेता बगदादी के बारे में ये माना जाता रहा है कि वो घायल हैं या उनकी मौत हो चुकी है। bbchindi.com की खबर के साथ गुरप्रीत सैनी।
इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी को इससे पहले आखिरी बार जुलाई 2014 में देखा गया था। नए वीडियो में बगदादी ने माना है कि इराक में इस्लामिक स्टेट का आखिरी गढ़ बागुस उनके हाथ से निकल गया है। ये वीडियो इस्लामिक स्टेट के मीडिया नेटवर्क अल फुरकान पर पोस्ट किया गया है। वीडियो अप्रैल में पोस्ट किया गया है लेकिन ये नहीं मालूम कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कब किया गया। इस वीडियो में बगदादी ने बागुस के साथ साथ श्रीलंका में ईस्टर संडे के मौके पर हुए हमलों के बारे में भी बात की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बगदादी का कहना है कि इराकी शहर बागुस में हुए इस्लामिक स्टेट के पतन का बदला लेने के लिए श्रीलंका में ईस्टर संडे के मौके पर हमले किए गए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। बीबीसी के रक्षा मामलों के संवाददाता फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना है कि हार के बाद इस्लामिक स्टेट खत्म नहीं हुआ है और अपने सिर पर 2.5 करोड़ अमरीकी डॉलर के इनाम के साथ उसके नेता अबू बकर अल बगदादी अभी भी जिंदा है और पकड़ से बाहर है। मूल रूप से इराक के रहने वाले बगदादी का असली नाम इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अल बद्री है। पिछले साल अगस्त में उनकी आवाज़ एक ऑडियो के जरिए सामने आई थी। बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता मार्टिन पेशेंच का कहना है कि तब ऐसा लगा था कि बगदादी ने इस्लामिक स्टेट को हुए नुकसान से ध्यान हटाने की कोशिश की है, लेकिन 18 मिनट के ताज़ा वीडियो में बगदादी का कहना है बागुस की लड़ाई खत्म हो चुकी है, इस लड़ाई के बाद बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ वक्त पहले इस्लामिक स्टेट उस वक्त अपने चरम पर था जब इराक सीरिया सीमा के एक बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण था, लेकिन साल 2016 में और उसके अगले साल इराक का मौसुल उसके हाथ से निकल गया। साल 2017 के अक्टूबर में सीरिया के रक्का में भी उन्हें खदेड़ दिया गया था। कुर्दों की अगुवाई वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का दावा है कि इराक का बागुस शहर भी अब उनके नियंत्रण में है। बताया जाता है कि बगदादी का जन्म साल 1971 में इराक के बगदाद शहर के उत्तर में स्थित समारा में हुआ। कुछ पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक साल 2003 में जब अमरीकी सेनाएं इराक में दाखिल हुईं तब तक बगदादी शहर की एक मस्जिद में मौलवी हुआ करते थे। साल 2014 की रिपोर्टों के अनुसार इस्लामिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम ISIS ने इराक और सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाके में खिलाफत यानी इस्लामी राज्य की घोषणा की थी। संगठन ने अपने मुखिया अबू बकर अल बगदादी को खलीफा और दुनिया में मुस्लिमों का नेता घोषित किया था।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। श्रोताओं, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे जकार्ता। बिल्कुल सही है, अभी फिलहाल जकार्ता ही इंडोनेशिया की राजधानी है, लेकिन आने वाले समय में बहुत मुमकिन है कि जकार्ता की जगह कोई और शहर इंडोनेशिया की राजधानी बन जाए। जकार्ता खतरे में है। ज़्यादा जानकारी बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद की ज़ुबानी।
इंडोनेशिया के योजना मंत्री बम्बेंग ब्रोजिन गोरो ने राजधानी बदलने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जोको विदोदो ने इस बारे में एक अहम फैसला किया है। नई राजधानी किस जगह होगी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्लान कोराया का नाम सबसे आगे है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडोनेशिया की राजधानी को आखिर क्यों बदला जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया की मौजूदा राजधानी जकार्ता धीरे धीरे डूब रही है। दरअसल इंडोनेशिया दलदली जमीन के किनारे पर बसा है जहां 13 नदियां एक दूसरे को काटती हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस शहर का बड़ा हिस्सा साल 2050 तक डूब सकता है। उत्तरी जकार्ता हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर डूबता जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या को राजधानी बदलने की दूसरी वजह बताई जा रही है। साल 2016 के एक सर्वे में सामने आया था कि जकार्ता उन शहरों में शुमार है जहां ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। सरकार के मंत्रियों को बैठकों में समय पर पहुंचने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। योजना मंत्री के मुताबिक जकार्ता की ट्रैफिक की समस्या की वजह से अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। राजधानी की मौजूदा दशा के बारे में मंत्रिमंडल की बैठक में 3 विकल्पों पर चर्चा हुई। एक था कि मौजूदा राजधानी में सरकारी दफ्तरों के लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाए, दूसरा था कि उन्हें जकार्ता के बाहर भेज दिया जाए और तीसरा विकल्प था कि किसी दूसरे द्वीप पर एक बिल्कुल नई राजधानी बना दी जाए। राष्ट्रपति योडो को तीसरा विकल्प ठीक लगा। योजना मंत्री ब्रोजेने गोरो का कहना है कि इस प्रक्रिया में 10 साल का समय भी लग सकता है। उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि अगर दूसरे देश अपनी राजधानी बदल सकते हैं तो इंडोनेशिया भी ऐसा कर सकता है। राजधानी बदलने के लिए उन्होंने ब्राजील, कजाकिस्तान और म्यांमार का उदाहरण दिया। ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति विडोडो ने पूरे देश के हर हिस्से में आर्थिक तरक्की की प्रतिबद्धता जताई है। इंडोनेशिया में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं जिसमें राष्ट्रपति विडोडो ने जीत की घोषणा की है, हालांकि आधिकारिक नतीजे 22 मई तक आ सकते हैं। इंडोनेशिया को साल 1945 में डचों से आजादी मिली थी, उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी को बदलने पर कई बार विचार हुआ है लेकिन 6 राष्ट्रपति यह नहीं कर पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति विडोडो क्या वाकई राजधानी बदल कर दिखाएंगे।
इंडोनेशिया की राजधानी बदलने की योजना, रिपोर्ट सुना रहे थे इकबाल अहमद।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
वाराणसी लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार तेज बहादुर यादव को सपा बसपा गठबंधन का साथ मिल गया है। गठबंधन ने शालिनी यादव की जगह तेज बहादुर यादव को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। ये वही तेज बहादुर हैं जिन्होंने BSF में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था और बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। BBC संवाददाता आदर्श राठौर ने तेज बहादुर यादव से बात की और जानना चाहा कि कैसे उनका मन बदला कि निर्दलीय के बजाय गठबंधन के उम्मीदवार बन जाएं और उन मुद्दों का क्या होगा जो उन्होंने उठाए थे।
हमने सभी पार्टियों को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी थी जब हम बनारस में आए कि भाई जो पार्टियां वाकई में कहती हैं कि हम फौजियों के साथ हैं और किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, तो आज देश की हालात है, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो आप हमारा सहयोग करें। तो उस लेटर के बाद आम आदमी पार्टी ने हमारा समर्थन कर दिया सबसे पहले, और परसों सुबह जो है हमारे को कॉल आया कि आप लखनऊ आ जाइए। जैसे ही हम लखनऊ गए उन्होंने कहा कि आप अपने हमारी पार्टी चुनाव लड़ लीजिए। हमने कहा जी ठीक है, जब भी आप चाहते हैं तो हम आपकी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेंगे
जी। तो किन से मुलाकात हुई आपकी, क्या अखिलेश जी से मुलाकात हुई?
हाँ, उनके कार्यालय से फोन आया था और फिर अखिलेश जी से हमारी 11 बजे मुलाकात हुई। उन्होंने जो हमें कहा कि भाई आप पार्टी से चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं, जो आपके मुद्दे हैं तमाम मुद्दे, उन मुद्दों पर हम सहमत हैं।
जैसा कि आपने कहा कि आपने चिट्ठियां लिखी थी सब पार्टियों को, कांग्रेस भी साथ में आपके तैयार हो जाती कि आपके पास दो ऑप्शन रहते कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आया और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, तब आप किस आधार पे चयन करते? मैं बस ये चयन का आधार समझना चाह रहा था आपका कि आपने जो पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।
देखो, जो हमारे मुद्दों को बिल्कुल सही तरीके से समझे और वो आगे हमारे मुद्दों को लेके चले, उसी हिसाब से हम चयन करते। अगर भी कांग्रेस को हमारे सारे मुद्दे पसंद आते जो मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तो तकरीबन हमारे मुद्दे नहीं लिए, अगर भी वो फिर भी कहते हैं कि नहीं हम आपके माध्यम से इन मुद्दों पे सहमत हैं, तो हो सकता है उनसे भी हम लड़ जाते, ऐसा कोई नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी से जुड़ जाने के बाद जो आपके अपने मुद्दे हैं जिनकी आप बात करते रहे हैं वो कहीं कमजोर हो जाएंगे और जो पार्टी की विचारधारा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं वो पार्टी के भी मुद्दे हैं। पार्टी ने खुद कहा कि हमारी लड़ाई जवान, किसान और आज के युवा, बेरोजगारी, सब मजदूर, हर मुद्दों को पार्टी उठाती रहती है। जैसे आपने पीछे देखा होगा पार्टी ने वो पेंशन का मुद्दा उठाया था, समाज पेंशन का मुद्दा बहुत चला हुआ है, शहीद के दर्जे का मामले में उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ बार बार। तो हमारे सब मुद्दे मिले हुए हैं और साथ में हमने अपने और मुद्दे छोड़े हैं, तो सहमत है उन सब मुद्दों से।
शालिनी यादव प्रत्याशी थी पहले, और वो क्या लगता है आपको, कहीं वो नाराज हुई या कहीं उनकी नाराजगी की वजह से?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है उनके कि हम महिलाओं की तरफ से वो पूरा समर्थन करेंगी और मेरे साथ होंगी।
पहले आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और अब आप एक पार्टी के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन जो समाजवादी पार्टी और बसपा का है, तो अब जो है आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव हुआ है, आपकी दावेदारी कितनी मजबूत हुई है सीट पर?
अभी तो बिल्कुल बराबर की टक्कर है, पहले तो थोड़ी सी हमारे पास काफी चीजों की परेशानियां थी, हम तो नौकरी से वैसे बर्खास्त किए हुए हैं, गरीब घर से हैं, जमींदार के बेटे हैं, तो एक पार्टी का सिंबल, हमारा निर्दलीय का सिंबल पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक पार्टी सिंबल पे है और गठबंधन है उसका पूरा, तो बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति पे है।
लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक मैदान में है आपके सामने? और
नहीं, हमने उनको भी चिट्ठी भेजा हुआ है, अगर जी उनकी भी समझ में आए तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि आप भी ये सामने चिट्ठी बीजेपी को भेजो था।
जी तो जिस तरह से आप हरियाणा से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी लंबी दूरी आपने तय की है, तो यहाँ आने का लक्ष्य क्या रहा, किस सोच के साथ आप वाराणसी आए?
मोदी जी यहाँ से जब इतने वोटों से जीत सकते हैं तो बनारस की जनता, मैं भी पहली बार आया हूँ और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें सहयोग करेगी। और दूसरा, जो वायदे किए थे पिछली बार वो सारे मोदी जी ने किए थे, और उन्हीं भावनाओं में बह के हमने वो मामला उठाया था रोटी का, और मिला क्या, बर्खास्त की, इसी दौरान मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, देश में एक भी वादा तो इन्होंने पूरा किया नहीं। तो सीधा सीधा हम यहाँ बनारस की धरती से इनसे सवाल पूछेंगे सामने खड़े होके कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने 2014 में जो वायदे किए थे क्या आपने कोई अभी तक एक पूरा किया है, बताओ आप हमें, अगर भी पूरा किया है तो आप बताइए।
ये थे वाराणसी में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़। और अब बात पंजाब की, जहाँ इस बार गुरदासपुर लोकसभा सीट पंजाब से बाहर भी लोगों का ध्यान खींच रही है। वजह है अभिनेता सनी देओल, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के खिलाफ मैदान में उतारा है। सुनिए गुरदासपुर से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा की आंखों देखी।
पंजाब में गुरदासपुर में पहली बार सनी देओल जनता के बीचों बीच आए। लोग उन्हें देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि सनी देओल और उनके भाई बॉबी के आते ही वे कुर्सियों के ऊपर खड़े हो गए। सनी देओल ने भी उन्हें निराश नहीं किया, पंजाब में थे तो पंजाबी में बोले, उनका भाषण छोटा था, 4 मिनट से कुछ कम, लेकिन अपने अंदाज में और बुलंद आवाज में लोगों में जोश भरने की कोशिश की। और अपने मशहूर डायलॉग भी सुनाए, जैसे कि वो 2.5 किलो के हाथ वाला। इससे पहले सुबह सनी देओल अमृतसर से गुरदासपुर पहुंचे। सनी देओल ने गुरदासपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में आकर अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। हमने कुछ लोगों से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि सनी देओल का पहला भाषण उन्हें कैसा
लगा। वधिया प्रचार लगा, उन्होंने चंगे सूझमान, फिल्मों च भी काम चंगा करते रहे ने। बॉर्डर फिल्म बड़ी तगड़ी सी उन्होंने,
तो वधिया उन्होंने सुन के बहुत वधिया लग्या, सारे दिलों में देश विच छाए हुए ने। उन्होंने कहा तुसी साडा साथ दो, असी तुहाडा साथ देवांगे।
गुरदासपुर की जनता फिल्मी कलाकारों को खूब पसंद करती है, शायद इसीलिए विनोद खन्ना 4 बार यहाँ से सांसद बने। लेकिन फिर भी इस बार मुकाबला कड़ा रह सकता है, क्योंकि सनी देओल का मुकाबला सुनील जाखड़ से होगा, जो कि बड़े नेता भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी गुरदासपुर।
और अब बात राजस्थान की। जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में पाकिस्तान की सरहद से महज 2 किलोमीटर दूर मुरार नाम का एक गाँव है। ये राजस्थान का सुदूरवर्ती मतदान केंद्र है, जहाँ वोट डालने के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आना पड़ता है। यहाँ कल लोकसभा चुनाव के 4th चरण में वोट डाले गए। वहाँ मौजूद थी बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे।
धूप में तपते रेत के टीलों की लंबी कतारों को पार करते हुए हम पहुंचे जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के आखिरी गांव मुरार। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस आखिरी गांव में ही मौजूद है थार रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा भारत का आखिरी पोलिंग स्टेशन। 6 निर्वाचन अधिकारियों की टीम सुबह जब चुनाव करवाने के लिए मुरार का तला प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ पर पहुंची तो उनके चेहरों पर भी भारत के बेहद दूरस्थ हिस्से में पहुंचने से जुड़ा आश्चर्य था। बीबीसी से बातचीत में बूथ इंचार्ज सत्यनारायण बताते हैं कि ये पोलिंग बूथ भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 2 किलोमीटर दूर है।
जैसलमेर का सबसे दूरस्थ जो पोलिंग बूथ है वो ये है, और यहाँ जब जैसे ही सुबह हमें बताया गया कि भी दूरस्थ स्थान पे हैं, एक बहुत बड़ी उत्कंठा थी और कि सबसे बॉर्डर के सबके नज़दीक का जो है वो एरिया आपको मिला है, वो बूथ आपको मिला है।
बीच थार रेगिस्तान में लोकतंत्र का या निर्वाचन अधिकार लोगों तक पहुँचाना आसान नहीं है। मुरार के इस पोलिंग बूथ पर 2012 से काम कर रहे राम अवतार मीना कहते हैं कि यहाँ चुनाव करवाने की परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल हैं।
यहाँ पे 6 ढाणियाँ हैं जिसमें इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की बहुत ही सारी विषम परिस्थितियाँ हैं। यहाँ एक ढाणी जो है ये बूथ पे 40 किलोमीटर दूर है, एक यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से दूर दूर से मतदाता यहाँ आते हैं वोटिंग करने के लिए, और मैं भी उनसे मिलने के लिए वहाँ दूर दूर तक जाता हूँ।
कर्मवाली गांव के रहमान की ही तरह यहाँ कई और मतदाता ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर रेगिस्तान पैदल पार कर अपना मत डालने आए।
10-12 किलोमीटर दूरी है वहाँ से, हम यहाँ वोट डालने के लिए आए। चले थे सवेरे से, गाड़ी में टाइम नहीं देखा, अब दूसरे निकलने से पहले चले थे।
बहुत दूरी दूरी से आते हैं लोग, ज़्यादा पैदल कोई यहाँ रास्ते वस्ते आए नहीं, गाड़ियों का साधन नहीं है वोट डालने के लिए, तो वोट देना तो बहुत जरूरी है।
तपते रेगिस्तान में मात्र 304 मतदाताओं के लिए खड़ा यह पोलिंग बूथ इस बात की गवाही देता है कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में देश के हाशिए पर रहने वाले आखिरी भारतीय नागरिक के वोट की कीमत भी बाकियों के बराबर है। प्रियंका दुबे, बीबीसी, मुरार, भारत पाकिस्तान बॉर्डर।
और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। गुरप्रीत तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के पहले पन्ने पर एक खबर दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद ये लोग तृणमूल से नाता तोड़ लेंगे। इस पर तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग में करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ही एक और खबर दिख रही है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जिसकी हेडिंग है कि 30,000 मदरसों को सरकारी नियंत्रण मिलेगा पाकिस्तान। खबर के मुताबिक चरमपंथ से निपटने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने सोमवार को घोषणा की कि वो 30,000 से ज़्यादा मदरसों को अपने नियंत्रण में लेगा और मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ेगा। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों को समसामयिक विषय पढ़ाए जाएंगे और ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जिसमें हेट स्पीच ना हो, ताकि छात्रों को सभी संप्रदायों का आदर करना सिखाया जाए। रावलपिंडी में एक प्रेस वार्ता में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा कि 30,000 से ज़्यादा मदरसे हैं जिनमें से सिर्फ 100 में चरमपंथ पनप रहा है और उनकी कोशिश है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर एक खबर दिख रही है, ये खबर और भी कई अखबारों में है कि जो कल चौथे चरण का मतदान हुआ उसमें 64% वोटिंग हुई और ये 2014 की वोटिंग के ट्रेंड से कुछ मिलती जुलती ही है। और इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो भी वहीं हुई, 77%।
गुरप्रीत सैनी बता रही थी दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि बिहार का मुंगेर जिला बंदूक उद्योग के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ बंदूक बनाने के उद्योग यहां लगभग खत्म हो गए और इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। मुंगेर से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
1700-1800 मजदूर हमारे यहाँ कार्यरत थे, खुशामद करता था कि हम लोग को वोट दे। वो सब बेचारे जो है वो पलायन कर गए हैं। हम लोग का रोजगार बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया, हम लोग भी जो है हमारे बाल बच्चे भी दूसरे काम में लग गए हैं। यहाँ देखता है कि जो मरे हुए जगह में काहे के लिए आएंगे।
ये आवाज है 94 साल पुरानी बंदूक बनाने वाली कंपनी के मालिक नवल चंद्र राणा की। वो और उनके जैसे कई बंदूक कंपनी के मालिक मुंगेर किला क्षेत्र के गन फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, बेकाम और बेगार जैसे। एक किलोमीटर के दायरे में फैले इस इंडस्ट्रियल एरिया में कभी 36 बंदूक बनाने वाली कंपनियां थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। सिर्फ फाइजर गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही कभी 1800 से ज्यादा बंदूक कारीगर थे, लेकिन अब ये महज 50 रह गए, जो आज भी मुंगेर के आसपास के इलाकों से रोजाना 9 बजे अपना अपना खाने का डब्बा और इस प्रोटेक्टेड एरिया में घुसने के लिए बनी एंट्री कार्ड को लेकर आते हैं।
यहाँ काम ही नहीं जब हो रहा है तो मजदूर यहाँ बैठ के क्या करेगा, चूंकि पीस रेट वर्क है, जॉब है यहाँ पर, मासिक सैलरी तो किसी को है नहीं, तो इसलिए लोग स्वतः बिना प्रेशर के अपना अपना विकल्प खोजने के लिए लोग चले गए हैं।
ये थी बंदूक यूनियन के अध्यक्ष जामन शर्मा की आवाज। जानकार बताते हैं कि बंदूक कारीगरी में कभी 25 नेत्रहीन कारीगर काम करते थे, जिनके काम की विशेषज्ञता लोगों को चौंकाती थी। 44 साल के मंटू चौधरी उनमें से एक हैं। बीते एक साल से गन फैक्ट्री के गेट के पास बने विश्वकर्मा मंदिर के पास वो टीन की छत डालकर रह रहे हैं। उन्हें बंदूक फैक्ट्री से काम मिलने का इंतजार है।
खाने पीने के भी तकलीफ हो जब कमेवे नहीं करिएगा तो खाइएगा कहाँ से।
लेकिन ये बदहाली क्यों? इस सवाल का जवाब 134 साल पुरानी कंपनी शौकी एंड सन्स के मालिक तारकेश्वर प्रसाद शर्मा देते हुए कहते हैं,
2001 के बाद ये पॉलिसी गवर्नमेंट का ऐसा हुआ कि इस ट्रेड को धीरे 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 इतना ने इस पर बोझ लाद दिया जाए कि ये ऑटोमेटिकली ये लोग अपने छोड़ के भाग जाए और लाइसेंस सरेंडर कर दें।
मुंगेर में जहां इन वैध फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा है, वहीं अवैध कारोबार फल फूल रहा है। सितंबर 2018 से अब तक 23 AK-47 इलाके से बरामद की जा चुकी है। फैक्ट्री मालिक बताते हैं कि मुंगेर गन फैक्ट्री को सरकार की तरफ से 12,000 गन सालाना बनाने का कोटा आवंटित है और ये बंदूकें टैक्स जोड़कर महज 20,000 रुपए में बिकती हैं। इस लिहाज से भी इस काम में कोई मुनाफा नहीं। मंदी की एक और वजह यह है कि मुंगेर गन फैक्ट्री शॉटगन बनाती है, जबकि अब लोगों के बीच दूसरी आधुनिक बंदूक की डिमांड है। मुंगेर और बंदूक का वैध रिश्ता अब भले लगातार कमजोर पड़ता जा रहा हो, लेकिन यह है बहुत पुराना। 1765 में मुंगेर को नवाब मीर कासिम ने बंगाल का मुर्शिदाबाद छोड़कर अपनी राजधानी बनाया। बाद में उन्होंने अग्नि हथियारों के निर्माण के लिए शस्त्रागार स्थापित किया और उसी वक्त से मुंगेर बंदूक निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया। ओम अली के बिहार डिस्ट्रिक्ट गजट में भी मुंगेर की बंदूक दुकानों का जिक्र है। मुंगेर से सीटू तिवारी, BBC।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल IPL 12 में डेविड वार्नर के तूफानी 81 रन की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घर में खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को 45 रन से करारी मात दी। पंजाब के सामने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो KL राहुल के 79 रनों के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। KL राहुल के अलावा मयंक अग्रवाल ने 27, निकोलस पूरन ने 21 और सिमरन सिंह ने 16 रन बनाए। लेकिन जब जीत का लक्ष्य बड़ा हो तो ये योगदान तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर के केवल 56 गेंदों पर बनाए गए 81 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 212 रन बनाए। उनके अलावा मनीष पांडे ने 36 और रिद्धिमान साहा ने 28 रन बनाए। कल की जीत के बाद अब हैदराबाद के 12 मैचों में 6 जीत के बाद 12 अंक हैं और वो चौथे स्थान पर है। कल के मैच के बाद डेविड वार्नर विश्व कप की तैयारियों के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी टीम को जीत का तोहफा दिया। वार्नर ने इस IPL में 12 मैचों में 692 रन बनाकर अपना दमखम भी दिखाया। आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। उधर आज से न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, जहां पिछले दिनों एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन की निराशा से उभरने की कोशिश में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल महिला एकल वर्ग में अपना दावा पेश करेंगी। साइना नेहवाल को न्यूजीलैंड ओपन में दूसरी वरीयता दी गई है, जबकि जापान की अकाने यामागुची को पहली और अमेरिका की झांग बेईवेन को तीसरी वरीयता दी गई है। साइना नेहवाल अपने अभियान का आगाज चीन की वांग झी के खिलाफ करेंगी। पुरुष एकल वर्ग में भारत के BSAI प्रणीत, शुभंकर डे और HS प्रणय अपने विरोधियों से पार पाने की कोशिश करेंगे।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। इस्लामिक स्टेट समूह ने एक व्यक्ति का वीडियो जारी किया है, जिसे वो अबू बकर अल बगदादी बता रहा है। बगदादी को आखिरी बार 2014 में इराक के मोसुल शहर की एक मस्जिद में देखा गया था। امریکہ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزنسٹائن نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے ہی 2016 کے امریکی راشٹرپتی چناؤ میں کتھت روسی ہستکشیپ کے معاملے میں جانچ کے آدیش دیے تھے. امریکہ نے اپنے یورپی سہیوگیوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے 5G نیٹ ورک کے لیے واگنر کمپنی کی سیوائیں لی تو ان دیشوں سے جانکاری ساجھا کرنا بند کر دے گا. بی بی سی سماچار.
नमस्कार. भारत में आज इतना ही. कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया. अगला प्रसारण दिन भर हर दिन की तरह भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे. फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति.